लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। हमने दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय की शुरुआत की है, जिसका शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पेय स्वरूप देता है। इसकी चर्चा करते हुए हमने अपने पिछले प्रसारण में कहा, संत बोनावेंतुरा दो आध्यात्मिक तरंगों को मिलाते हैं। वे यीशु के हृदय को संस्कारों और कृपाओं के स्रोत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं और वे हमें इस बात के लिए चिंतन करने का आह्वान करते हैं कि वह हृदय हमारे लिए मित्रों से संबंध स्थापित करता है, जहां हम प्रेम के एक व्यक्तिगत मिलन को पाते हैं। संत बोनावेंतुरा सबसे पहले हमें कृपा की सुंदरता और संस्कारों की प्रशंसा करने को कहते हैं, जो हमारे लिए यीशु के घायल हृदय से प्रवाहित होता है। यह इसलिए कि क्रूस पर सोते हुए यीशु की बगल से कलिसिया का निर्माण और सुसमाचार के कथन पूरे हो सकें। वे उसकी ओर देखेंगे जिन्हें उन्होंने बेधित किया है। एक सिपाही ने उसकी बगल को भाले से छेदित कर दिया। यह दिव्य योजना में पूरी हुई, जिससे घाव से बहने वाला लोहू और पानी हमारी मुक्ति की कीमत उसके छिपे हुए हृदय से प्रवाहित हो। यह कलिसिया के संस्कारों को कृपा का जीवन प्रदान करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार यह उन लोगों के लिए जो मसीह में रहते हैं जीवन झरने से प्याले भरने की तरह होता, जो अनंत जीवन की ओर बढ़ रहा है। संत बोनावेंतुरा इसके बाद हमें एक अलग कदम लेने को कहते हैं, जिससे कृपा तक हमारी पहुंच को एक प्रकार के जादू या नौ प्लेटोनिक उत्सर्जन के रूप में ना देखा जाए, बल्कि मसीह के साथ एक सीधे संबंध के रूप में, उनके हृदय में निवास के रूप में, ताकि जो कोई भी उस स्रोत से पान करे वह मसीह का मित्र एक प्रेमपूर्ण हृदय बन जाए। उठो तब हे आत्मा जो मसीह के मित्र हो, और वह कपोत बनो जो चट्टान की दरार में घोंसला बनाती है। वह गौरैया बनो जो घर ढूंढती है और लगातार उसकी रखवाली करती है। वह कबूतर बनो जो अपने प्रेम की संतान को सबसे पवित्र कोख में छिपाती है। श्रोताओं, यीशु का घायल हृदय जो हमारे लिए प्रेम का निवास और सभी कृपाओं का उद्गम स्थल है, विशेषकर मठवासी जीवन के संदर्भ में धीरे धीरे उनके हृदय के संग स्थापित करना शुरू किया। हम जानते हैं कि इतिहास में मसीह के हृदय पवित्र हृदय के प्रति भक्ति हमेशा एक ही तरीके से व्यक्त नहीं की गई थी, और इसका आधुनिक विकास जो विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों से संबंधित है, सीधे तौर पर मध्ययुगीन रूपों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और न ही बाइबल के रूपों से, जिसमें हम उस भक्ति के अंकुरित होने की झलक को देखते हैं। इसके बावजूद आज कलिसिया उन सभी अच्छाइयों को अस्वीकार नहीं करती है जो पवित्र आत्मा ने सदियों से हमें प्रदान किया है, क्योंकि वह जानती है कि उस भक्ति के कुछ पहलुओं में स्पष्ट और गहन अर्थ को समझना तथा समय के साथ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना संभव होगा। श्रोताओं, बहुत सी धर्मी नारियां जिन्होंने ख्रीस्त के संग अपने अनुभव की चर्चा करते हुए इस बात का उल्लेख किया है कि ईश्वर के हृदय में आराम करना उनके जीवन का स्रोत और आंतरिक शांति का कारण बना है। हम इसे हैकबोर्न के संत लुथगार्डी और मेल्टिडे, फोलिनो के संत एंजेला और नॉर्विच के देम जूलियन के संदर्भ में पाते हैं, जो हमारे लिए केवल कुछ उदाहरण हैं। हेफ्ता की संत गेट्रूड, एक सिस्टेरियन धर्म बहन, अपने प्रार्थना में व्यतीत किए गए समय की चर्चा करते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपने सिर को यीशु के हृदय में झुकाया और उन्होंने उसकी धड़कन सुनी। सुसमाचार लेखक संत योहन के संग वार्ता करते हुए उन्होंने उनसे यह सवाल पूछा कि इस अनुभूति की व्याख्या उन्होंने सुसमाचार में क्यों नहीं की। गेट्रूड अंत में कहती हैं, हृदय की धड़कनों की वह मधुर आवाज आधुनिक समय के लिए सुरक्षित रखी गई है, जिससे उन्हें सुनते हुए बुढ़ापे और कुनकुनी होती दुनिया ईश्वर के प्रेम से नवीकृत हो सके। क्या हम इसे ऐसा सोच सकते हैं कि यह हमारे समय के लिए एक संदेश है, एक बुलावा जो हमें इस बात को अनुभव करने हेतु निमंत्रण देती है कि हमारी दुनिया सचमुच में पुरानी हो गई है और इसे नए रूप में यीशु ख्रीस्त के प्रेम को अनुभव करने की जरूरत है। संत गेट्रूड और संत मेल्टिल्डे को पवित्र आत्मा के सबसे निकटतम विश्वास पात्रों के रूप में माना जाता है। श्रोताओं, कार्थुयंस, जो सैक्सोनी के लुडोल्फ से प्रेरित हुए थे, ने पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण को मसीह के प्रति स्नेह और निकटता में विकसित होने का एक साधन बनाया। हर कोई जो उनके घायल हृदय से प्रवेश करता है वह प्रेम से प्रज्वलित होता है। सियेना की संत कैथरीन लिखती हैं कि हम ईश्वर के दुखों को समझने में अयोग्य होंगे, लेकिन ख्रीस्त का खुला हृदय हमें उनके संग एक सजीव व्यक्तिगत अद्वितीय प्रेम को अनुभव करने में मदद करता है। मैं तुम्हें अपने हृदय के रहस्यों का खुलासा करने की चाह रखता हूँ, तुझे उसे खुले रूप में दिखाना चाहता हूँ, जिससे तुम इस बात को समझ सको कि मैंने तुम्हें कितना अधिक प्रेम किया है, जितना मैं तुम्हें उस पीड़ा से साबित नहीं कर सकता था जो मैंने कभी सहन किया था। श्रोताओं, इस भांति ख्रीस्त के हृदय की भक्ति मठों की दीवार से परे जाते हुए संत शिक्षकों, उपदेशकों और धर्म समाज, धर्म संघों के संस्थापकों की आध्यात्मिकता को समृद्ध बनाती है, जिन्होंने उसे पृथ्वी के सुदूर प्रांतों तक प्रसारित किया। यहाँ हम विशेष रूप से संत योहन एयुदेस की पहल को पाते हैं, जिन्होंने अपने साथियों के संग रेनेस में एक जोशीले प्रवचन के बाद उस धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को प्रभु यीशु ख्रीस्त के आराध्य पवित्र हृदय के त्योहार को मनाने की स्वीकृति देने के लिए राजी कर लिया। यह पहला ऐसा अवसर था जब कलीसिया में आधिकारिक रूप से ऐसा एक त्योहार मनाया गया। इसका अनुसरण करते हुए सन 1670 और 1671 के बीच में काउंटेस एवरेक्स, बेयक्स, लिसियुक्स और रूवेन के धर्माध्यक्षकों ने अपने अपने धर्म प्रांतों में इस पर्व को मनाने की अधिकृत स्वीकृति दी। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। करूंगा उसके लिए, जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जब आएगी कठिनाइयां, चलता जाऊं।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य लाभ के बारे में वाटिकन प्रेस कार्यालय ने जानकारी दी है कि संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। उनके श्वसन और ध्वनि प्रणालियों में सुधार जारी है। जहां तक ऑक्सीजन का प्रश्न है, वे कुछ लंबे समय तक इसके बिना भी काम चला लेते हैं। उच्च प्रवाह ऑक्सीजन के संबंध में यह चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए एक अविशिष्ट उपयोग है, हमेशा शाम के समय और जब आवश्यक हो। विभिन्न चिकित्साएं जारी हैं। कुरिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठकें भी जारी हैं। इस वर्ष क्रूस मार्ग का चिंतन संत पापा द्वारा तैयार किया गया है और यह पवित्र शुक्रवार को 12 बजे प्रकाशित किया जाएगा। कोलोसेयम में क्रूस रास्ता की अध्यक्षता कार्डिनल रेना करेंगे। गुरुवार की सुबह क्रिसम मिसा की अध्यक्षता परम धर्म पीठीय विरासत प्रशासन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल डोमेनिको कलगानो करेंगे। सेंट पेत्रुस महागिरजाघर में समारोहों के कैलेंडर आज जारी कर दिया गया है। गुरुवार को महागिरजाघर में अंतिम ब्यारी धर्म विधि का अनुष्ठान शाम 6 बजे होगा और शुक्रवार को दुखभोग समारोह की अध्यक्षता कार्डिनल गुगेरोती करेंगे। संत पापा ने ही कार्डिनलों को विभिन्न समारोहों का अनुष्ठान करने का दायित्व सौंपा है। ईस्टर त्रिदियुम के अनुष्ठानों में संत पापा की उपस्थिति का अभी भी कोई संकेत नहीं है। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 14 अप्रैल को संत प्रकरण के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के साथ एक बैठक में 6 लोगों के प्रस्तावित आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया। संत पापा ने धन्य कुमारी की एलिसबा द्वारा किए गए चमत्कार को मान्यता दी। फादर नाजरेनो लंचोती की शहादत और अंतोनी गाउदी, फादर पीटर जोसेफ त्रिएस्त, फादर अंजेलो बुगेती और फादर अगुस्तिनो कोजोलिनो के वीर गुणों को मान्यता दी है। इस सेविका धन्य कुमारी एलिसबा का जन्म 15 अक्टूबर 1831 को वरपुड़ा, केरल, भारत में हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक अमीर व्यवसायी से शादी की और 1851 में उनकी एक बेटी हुई। अगले साल विधवा होने के बाद उन्होंने प्रार्थना और एकांत का जीवन चुना, जिसमें अक्सर संस्कारों में भाग लेना शामिल था। उन्होंने गरीबों की देखभाल की और एक साधारण झोपड़ी को अपना घर बना लिया। 1862 में उनकी मुलाकात इतालवी डिस्काल्ड कार्मेलाइट फादर लियोपोल्ड बेकारो से हुई और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में उन्होंने केरल में पहली स्थानीय धर्म समाज डिस्काल्ड कार्मेलाइट्स के तीसरे ऑर्डर की स्थापना की। आज 15 अप्रैल को सूडान अपने संघर्ष के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है, जो 2023 की शुरुआत में 7.8 मिलियन से बढ़कर आज 15 मिलियन से अधिक हो गई है। यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गई, तो सूडान का भयावह मानवीय संकट और भी बड़ी आपदा में बदल सकता है। बच्चों के प्रति हिंसा, भूखमरी और बीमारी बढ़ रही है। विस्थापन के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। परिवारों तक मानवीय सहायता और वित्त पोषण की कमी आ रही है तथा मई से अक्टूबर तक बरसात का मौसम निकट आ रहा है, जो अक्सर विनाशकारी बाढ़ और कुपोषण तथा बीमारी में वृद्धि लेकर आता है। दो वर्षों की हिंसा और विस्थापन ने सूडान में लाखों बच्चों के जीवन को उलट पुलट कर रख दिया है। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, आवश्यकताएं मानवीय सहायता निधि से अधिक होती जा रही हैं। बारिश का मौसम आ गया है, ऐसे में पहले से ही कुपोषण और बीमारी से पीड़ित बच्चों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करती हूं कि वे कार्यवाही के इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं और सूडान के बच्चों के लिए कदम उठाएं। आखिरकार हमें जवाब मिल गया है। यूक्रेन और रूस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बैठक पर एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पुतिन स्थायी शांति के लिए तैयार है। विटकॉफ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मास्को कीव पर क्या शर्त लगाएगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार समझौते वार्ता का हिस्सा है। मेरा मानना है कि कुछ बहुत ही दिलचस्प व्यापार अवसरों के माध्यम से रूसी अमेरिकी संबंधों को नया रूप देने की संभावना है, जो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में वास्तविक स्थिरता भी ला सकता है। राष्ट्रपति पुतिन और रूस के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाने की सिफारिश कथित तौर पर कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की गई थी, जिन्होंने सुमी पर हुए भयानक हमले के बाद, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की आलोचना की थी, जो 20 गुना बड़े देश के साथ युद्ध छेड़ने के दोषी थे, और बाद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निंदा की थी। जेलेंस्की की प्रतिक्रिया आने में ज्यादा समय नहीं लगा, बल्कि शाम को देश के नाम उनके सामान्य भाषण के दौरान आई। उन्होंने कहा, यूक्रेन कभी भी यह युद्ध नहीं चाहता था। यूक्रेन इस खतरे के बारे में चेतावनी दे रहा है कि यह संघर्ष विश्व युद्ध में बदल सकता है। यूरोपीय संघ ने 9 मई को यूरोप दिवस के लिए सभी 27 प्रतिनिधि मंडलों के साथ यूक्रेन संभवतः लीव जाने का निर्णय किया है। यह रूस के लिए भी एक प्रतीकात्मक दिन है, जब मास्को में द्वितीय विश्व युद्ध की विजय परेड होती है, जिसे देखने के लिए यूरोपीय संघ लोगों को आमंत्रित कर रहा है। उधर रविवार को गाजा शहर में अल अहरी अरब अस्पताल पर एक इजरायली हवाई हमले में बुनियादी ढांचों को गंभीर क्षति पहुंची और उसे बंद करना पड़ा। इजरायली सेना ने कहा कि हमले में परिसर के भीतर हमास कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। आरोप है कि इसका इस्तेमाल हमलों के समन्वय के लिए किया गया था। चिकित्सा कर्मचारियों ने बताया कि सेना ने हमले से पहले निकासी की चेतावनी जारी की, जिससे सर्जिकल ऑपरेशन विभाग और ऑक्सीजन उत्पादन इकाई क्षतिग्रस्त हो गई। बमबारी के बीच अराजक निकासी हुई। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।